हरे कृष्णा। तो हम लोग सब अभी निगड़ी मंदिर में बैठे हैं 22 जनवरी 2012 को। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ की बात जो मुझे बहुत हृदय को आकर्षित करती है कि यहाँ के जो भक्त हैं बहुत सरल हृदय है, सिंपल हार्टेड है। और जिस प्रकार से उद्घाटन के समय जब प्रतिष्ठापना भगवान की हुई थी यहाँ पर, सब भक्तों ने मिलकर इतना प्रेम से लोगों को स्वागत किया था। उद्घाटन समय पे तो बहुत बड़ा समारोह हुआ था, बहुत हजारों लोग यहाँ पर आए थे। और वो हर जगह होता है, वैसे ही व्यवस्था करनी पड़ती है, प्रसाद की, पंडाल की, लेक्चर की, इसकी, अभिषेक की, यज्ञ की, सब होती है, वो तो होती ही रही। लेकिन सबके मन में एक डिस्टिंक्ट, विशेष रूप से सबके मन में जो अनुभव हुआ सबको, कि भक्त लोगों ने बहुत ही प्रेम से सबका स्वागत किया। एकदम ऐसा होता ना, ठड़क दृष्टिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्प्रेशन जो था वो सब लोगों को याद रहा कि जिस तरह से भक्तों ने यहाँ पर उनका स्वागत किया। वेरी वेरी नाइस। दो दिन का फंक्शन था, मंदिर के बीच के प्रांगण में, पूरे प्रांगण में बहुत बड़ा यज्ञशाला बनाया गया था। और जैसे हम लोगों ने यज्ञ किया था ना अभी एनुअल डे पे, उसके कम से कम 4 गुना कुंड बड़ा था, ह्यूज। और उसमें सुदर्शन यज्ञ भी हुआ, क्योंकि सुदर्शन की स्थापना हुई, वो जो तांबे पीतल का जो घुमट है ना, उसके ऊपर चक्र का स्थापना किया है। तो यज्ञ कुंड से चक्र तक एक डोरी से उनको संपर्क किया था और वहाँ से उनकी मंत्रों से स्थापना की थी। फिर सभी ठाकुर जी को भी स्थापना किया था और करीब पूरा दिन तक वो चला था, फुल डे। उसके पहले दिन जो मैंने आपको ये गर्भगृह दिखा ना नीचे, इसके नीचे जो दिखाया ना, इसके अंदर मंदिर का गर्भगृह है, वहाँ पर एक बड़ा, इससे भी बड़ा कमरा है, वहाँ पर ठाकुर जी को प्रीवियस डे मंदिर बनाकर उनको वहाँ पर सुलाया था। तो उनका नेत्र उन्मिलन किया था, बहुत सुंदर। मेरा परम भाग्य ये था कि भगवान को रात के समय प्रतिष्ठापना करने के पहले दिन जब मूर्तियों को आह्वान किया गया था, उनको वहाँ पर विश्राम शयन किया गया था, उसमें मुझे कीर्तन करने का मौका मिला। अचानक दे कॉल्ड मी और अकेले ने मैं पूरा उनका शयन का कीर्तन जो है वो पूरा किया और मैं बहुत अपने आप को भाग्यवान समझ रहा था उस समय। और नेक्स्ट डे जब उनको जगाने का समय आया तो भी मुझे कीर्तन करने के लिए बुलाया गया, फिर पूरा कीर्तन किया उनके लिए। उसमें सब लोग लाइन से आके दर्शन कर रहे थे गोल गोले से और बहुत मंद शांति से बहुत देर तक कीर्तन किया गया। तो उनको शयन कराना और उनको उत्थापन जो है जगाना, दोनों हमारा परम भाग्य हुआ। और राधा गोविंद जी की जो राधा रानी है वो इतनी, उनकी जो नज़र है, उनकी दृष्टि जो है वो इतनी करुणा से भरी हुई है, इतनी प्रेम से उनको देख के रहता है कि वही माँ जो है, विश्व माता जो है, सब बालकों को निहार रही है। विन जस्ट गो ऑन सीइंग हर कॉन्स्टेंटली। इस तरह से राधा गोविंद जी, इनका जो नाम है गोविंद, वो कैसे गिरा राधा गोविंद नाम भगवान का, कि जब इंद्र ने भगवान का अपराध किया, सब ब्रज पर बहुत वर्षा की और उनको कष्ट दिया, पीटा दिया, तो भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को उठाया 7 दिन और 7 रात तक। और उसके बाद में जब इंद्र को होश आया कि अरे ये तो भगवान है, 7 दिन 7 रात के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं तो पूरी जिनों जान से वर्षा कर रहा हूँ, मेरी बेस्ट वर्षा जो है, सबसे भयंकर वर्षा, मेरे पास शस्त्र जो है संवर तक बादल, इनके द्वारा मैं वर्षा कर रहा हूँ, फिर भी ठाकुर जी और ब्रजवासियों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, आराम से आनंद ले रही हूँ गोवर्धन के नीचे। तब उसको होश आया कि ये कोई बालक नहीं है, ये तो मेरे भगवान है, बालक के रूप में लीला कर रहे हैं। तब उन्होंने वर्षा को रोका, फिर भगवान ने देखा वर्षा रुक गई है तो उन्होंने पर्वत को नीचे रखा। तो उसके बाद इंद्र जो है वो बहुत दुखी हो गए, बहुत परेशान हो गए वो, कि मैंने इतना बड़ा अपराध किया। हाँ, किसी ऑफिस में हम लोग किसी का अपराध कर लेते हैं तो ठीक है, लेकिन हम बॉस का अपराध कर लेंगे तो कैसे होगा जो हॉस्पिटल के इंचार्ज है उसका ही हमने अपमान कर दिया तो कैसे होगा। तो ये तो विश्व के मालिक है ठाकुर जी, तो उनको समझ में आया कि मैं तो एक देवता हूँ, देवताओं का राजा हूँ, ये तो विश्व के नियंता है, निर्माण करता है। तो बहुत पछतावा उनको हो गया। फिर वो ऐरावत हाथी पे बैठकर नीचे आए और भगवान को माफ़ी मांगने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन भगवान भी ऐसे थे कि जब नीचे आया वो, उस समय पर्वत को नीचे रखा नहीं था, जब पर्वत उठाए थे भगवान, खाली वर्षा बंद हो गई थी, और भगवान एक हाथ में मुरली बजा रहे थे, एक हाथ में पर्वत को खड़े हुए थे। उस समय इंद्र जो है हाथी पर बैठकर एक तरफ से आया और भगवान का नज़र आकर्षित करने का प्रयास किया उसने। तो जब यहाँ से आया तो भगवान ने वहाँ देखा, फिर वो वहाँ से आया तो भगवान ने इधर देखा, मतलब दुर्लक्ष कर दिया पूरा उसके ऊपर, यू आर नथिंग, आई डोंट केयर फॉर यू। तो समझ गया कि मैं आया था माफी मांगने के लिए, लेकिन अपराध बहुत भयंकर कर दिया मैंने, इसलिए मुझे अभी कुछ उसका उपाय करना पड़ेगा। डर गया बहुत वो। फिर वो स्वर्ग लोक में बृहस्पति जी हुए, उनके गुरु जी हैं, देवताओं के गुरु हैं, उनके पास गए। वो क्या करो, मैं गुरु महाराज मैंने बहुत बड़ा भयंकर अपराध कर लिया है, इट्स कॉल्ड ब्लंडर, यू नो, घोर अपराध। तो विश्व बृहस्पति ने कहा कि मेरे पास तुम्हारे अपराध का उपाय नहीं है, आई एम सॉरी, आपने बहुत भयंकर अपराध किया, आई डोंट नो कि इसका उच्चाप या उसका पश्चाताप कैसे कर सकते हो, तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ। तो फिर बृहस्पति के पास चर्चा करके फिर आगे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम सब चलेंगे, अकेले जाओगे तो आपको कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, सब जाएंगे हम लोग, और आपको एक काम करना पड़ेगा कि भगवान का कोई भक्त होगा ना, उसके चरणों की शरण लेनी पड़ेगी आपको। बोला ऐसा कौन भक्त है जिसका भगवान सुन सकते हैं, जो मेरे सिफारिश कर सकते हैं? तो उन्हें कहा कि सुरभि गाय जो है, जिसके नाम पर भगवान ने अपना धाम का नामकरण किया है, गौ लोक धाम, मतलब क्या, जहां पर गाय रहती है उस धाम का नाम भगवान के घर का नाम है। तो वो जो सुरभि गाय है, सुरभि गायों का जो झुंड है, वो सुरभि गाय भगवान को बहुत पसंद है, और अगर सुरभि गाय की शरण आप लेते हो और वो आपके लिए सिफारिश करती है, तो हो सकता है भगवान आपको माफ कर सकते हैं। तो देवेंद्र जो है, देवताओं को 33 करोड़ देवताओं के राजा जो इंद्र हैं, वो एक सिंपल गाय के पास आए उतर कर वापस वहां से पृथ्वी पर, और दंडवत प्रणाम किया गाय को उन्होंने, तो चरणों की शरण ली और प्रस्ताव रखा कि मैंने ऐसा ऐसा गलती किया है, बहुत भयंकर अपराध किया है, अभी आप कुछ कर सकते हो मेरे लिए तो अच्छा है। तो भगवान के भक्त बहुत दयालु होते हैं, वो कहीं गुस्सा नहीं करते, ऐसा नहीं कि वो सुरभि गाय को कष्ट नहीं हुआ था। जब वर्षा भयंकर हो रही थी तो सुरभि गाय, अनंत गाय, बैल, बछड़े सब कष्ट में थे, लेकिन फिर भी जब पश्चाताप कोई करता है तो भक्त अपने अपने ऊपर हुए अपराध का कभी भी याद नहीं करता है। एक बार किसी ने पश्चाताप कर लिया, माफी मांग लिया, भक्त कभी याद रखते नहीं है कि उन्होंने क्या किया था। जब देखा उन्होंने इंद्र के इतने गर्भ में थे, इतना बड़ा अपराध किया, जब गर्भ हरण होकर जब शांत होकर नम्र होकर विनती कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए जाऊंगी। तो उस समय पर्वत नीचे रखे हो गया था, सब लोग घर पे गए थे, और भगवान उस समय कितना लॉस्ट और डैमेज हो गया है ब्रज भूमि के अंदर, नुकसान कितना हो गया है वर्षा के कारण, वो उसका इंस्पेक्शन कर रहे थे, उस समय देख रहे थे कहाँ कहाँ क्या क्या नुकसान हो गया है। उस समय सुरभि गाय इंद्र को भगवान के पास लेके आती है, और उस समय उनकी सिफारिश करने के बाद पहली बार भगवान उसको देखते, तब तक तो देखते भी नहीं थे उनकी तरफ, उस दिशा में भी मुड़ते नहीं थे भगवान। जब भक्त ने सिफारिश किया तब जाकर भगवान ने पहली बार उनको देखा, फिर इंद्र ने दंडवत प्रणाम किया, माफी मांगी, स्तुति की भगवान की, तब भगवान ने उनको माफ किया। तब इंद्र ने कहा कि मैंने इतना बड़ा अपराध किया है, मेरी मुझे कुछ ना कुछ आपकी सेवा करने की इच्छा है, तो मैं चाहता हूं कि सब देवताओं का मिलकर, देवता सब मिलकर आपका अभिषेक करें। तो फिर उन्होंने, इंद्र भगवान ने हाँ कर दी। फिर इंद्र ने सभी देवताओं को आदेश दिया कि आपके लोकों में क्या क्या बेस्ट वस्तु है वो सब आप लेके आओ। तो वरुण जी ने सिंहासन लाया, वायुदेव छत्री लेकर आए, छत्र लेकर आए, ऐसे अपने अपने धाम से बेस्ट बेस्ट चीजें उठा कर ले आए वो, और सब यहाँ पर बहुत बड़ा दिव्य स्वर्गीय मंडप खड़ा कर दिया उन्होंने, और कोई देवता पंखा दे रहे हैं, कोई देवता हवा दे रहे हैं, कोई देवता चमर ढुला रहे हैं, कोई देवता मोर पंख ढुला रहे हैं, कोई देवता, ऐसे अलग 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 सेवा उनकी चालू हो गई, कोई संगीत गा रहे हैं, कोई अप्सराएं नृत्य कर रही है उनके आनंद के लिए। फिर भगवान को उन्होंने वरुण देव के द्वारा लाए गए सिंहासन पर बिठाया, और ऐरावत ने उनके पांच सुंड हैं, और बहुत भव्य शरीर है उसका, ऐरावत ने 5 सुंड में आकाश गंगा का पानी लेकर आया। गंगा जो है ना, जब वैकुंठ से आती है ना भगवान के चरणों से, तो पहले वो स्वर्ग में प्रवेश करती है, तो वो उसको आकाश गंगा कहते हैं, फिर वो पृथ्वी लोक पर आती है, फिर उसको कहते हैं गंगा देवी, और फिर वो पाताल में जाती है, फिर क्या कहते हैं उसको, पाताल गंगा। तो ऐरावत ने अपने 5 सुंड में भरकर आकाश गंगा का पानी लाया और एक कुंड में रखा, उसका नाम ऐरावत कुंड है, वहां पर है। और सुरभि गाय ने अपने दिव्य दूध से, और ऐरावत ने और इंद्र ने आकाश गंगा के जल से भगवान का अभिषेक किया, बहुत सुंदर अभिषेक किया, बहुत भव्य और दिव्य और दैदीप्यमान नेत्र दीपक अभिषेक किया उनका। फिर उसका जल जो इकट्ठा हुआ, जो उनके शरीर से उतरते हुए, उससे एक बड़ा कुंड बना, उसका नाम बना गोविंद कुंड। तो उस समय जब भगवान का अभिषेक किया उन्होंने, तो फिर इंद्र ने कहा कि आज से आपको हम गोविंद के रूप से सम्मानित करेंगे, संबोधित करेंगे। गोविंद का अर्थ क्या होता है? गो यानी तीन अर्थ होते हैं उसके, एक है गाय, दूसरा है इंद्रिया, हमारे जो सेंसेस है ना इन शरीर के, उसको भी गो कहते हैं, और तीसरा गो का अर्थ क्या है? भूमि, हाँ, पृथ्वी। तो ये तीन के स्वामी आप हैं गोविंद, इसलिए आज से हम आपको गोविंद के नाम से पुकारेंगे। तो वहीं पर जो पानी इकट्ठा हुआ उसका भी नाम गोविंद कुंड रखा गया। जो गोविंद कुंड का जल जो है वो भगवान का चरणामृत है, भगवान के शरीर को धोते हुए निकला हुआ परम जल है वो, उसमें दूध और आकाशगंगा का पानी है, जो जीव के लिए भगवान के अभिषेक के कारण परम कल्याणकारी जल है। और उसी गोविंद कुंड के किनारे राधा गोविंद जी का विग्रह स्थापन किया गया। आज भी आप जाएंगे वृंदावन में गोवर्धन के पास, तो गुलाबी रंग का घुमट है उसके ऊपर, बहुत सुंदर मंदिर है, राधा गोविंद जी उसमें विराजमान है। और राधा गोविंद जी जो हैं उनका और एक महत्व ऐसा है कि राधा गोविंद जी भक्तों को भौतिक दुनिया से मोह छोड़ने के बाद भगवान की सेवा में या अपनी सेवा में लगाते हैं। वो हम सब लोग अभी भगवान को छोड़कर दुनिया में भटक रहे हैं, तो मदन मोहन जी भगवान जो है वो दुनिया का जो आकर्षण है वो छुड़ाकर हमको भगवान की सेवा में लगा देते हैं, मतलब कनेक्शन कर देते हैं। जैसे कि हमने ये मोबाइल खरीदा, हम जो तो पहला इंस्ट्रूमेंट आता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है, फिर उसको आता है कनेक्शन, एक बार कनेक्ट करके एक्टिवेट कर दिया फिर वो मोबाइल चालू हो गया, लेकिन तो खाली चालू हो गया, उसके बाद मोबाइल हम लोग यूज़ करते हैं SMS करने के लिए, कॉल करने के लिए, कॉल होल्ड है, कॉल रिकॉर्डिंग है, क्या 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 उसको यूज़ करते हैं, और कुछ देर के बाद भी फिर वो मोबाइल हम लोग यूज़ करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, है ना, नया नया ढूंढे रहते क्या है उसके अंदर, किधर क्या कौन सा आइटम कौन सा है, किधर कौन सा गेम है, कहाँ पर कॉन्टैक्ट है, कहाँ पर SMS स्टोर किया है, कहाँ पर ईमेल है, कौन सा ईमेल कॉन्फिगर करना है, ऐसे हम ढूंढते रहते हैं। पहले कुछ समय के बाद में उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने में हम लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो वैसे मदन मोहन जी जो है वो भगवान के विग्रह जो है वो हमें भौतिक दुनिया से हटाकर भगवान से कनेक्ट कर देते हैं, इसलिए उनको भगवान के संबंध अधिदेव कहा गया है, जो भगवान से हमारा संबंध जोड़ देते हैं, है ना। और गोविंद जो देव जो हैं उनके विग्रह का नाम दिया गया है अभिदेय अधिदेव। अभिदेय का मतलब है कि जो कनेक्शन मदन मोहन जी ने, संबंध अधिदेव ने कर दिया है, उसको परिपूर्ण करने का काम गोविंद देव करते हैं। तो हम गोविंद देव से क्या प्रार्थना करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दोबारा दर्शन करेंगे दोबारा प्रार्थना कीजिए। वो प्रार्थना ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं दुनिया से संपर्क हटाकर, मतलब भौतिक दुनिया का भौतिक संपर्क हटाकर हम आपके सेवा में लगना चाहते हैं, कृपा करके आपकी सेवा में हमको आप परिपूर्णता दीजिए। प्लीज हेल्प अस टू परफेक्ट अवर सर्विस इन प्रॉपर कॉन्शियसनेस एंड मूड इन योर सर्विस। वो प्रार्थना करते हैं। फिर जब इनकी कृपा से हमारी सेवा परिपूर्ण हो जाती है, तो फिर गोपीनाथ जी, राधा गोपीनाथ जो हैं उनका काम क्या है, वो हमारी अपनी मुरली से हमारा ध्यान उनकी ओर आकर्षित कर लेते हैं। उनकी जो मुरली बज रही है अब तक हमको सुनाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि हम लोग अभी तक अशुद्ध हैं। जब हमारी सेवा परिपूर्ण हो जाएगी, आत्मा शुद्ध हो जाएगी, तब उनकी बजती हुई मुरली जो है वो हमको सुनाई पड़ने लगेगी, मतलब फाइनल अट्रैक्शन टू द लॉर्ड हमारे हृदय में एस्टैब्लिश हो जाएगा। ये सिस्टम है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब क्या है? अल्टीमेट पर्पज, फाइनल उद्देश्य क्या है तुम्हारा? हम लगे ना कि आपने हॉस्पिटल बनाया, उसका प्रयोजन क्या है? व्हाट इज द यूज, व्हाट इज द पर्पज? तो प्रयोजन मीन्स अल्टीमेट पर्पज। तो गोपीनाथ जी ये अल्टीमेट पर्पज हमको देते हैं, उनकी ओर हमको आकर्षित करके फिर यहां से हमको लेके अपने धाम में लेके जाते हैं। तो ये गोविंद देव की कथा है। और गोविंद देव का विशेष रूप से आप वृंदावन में कितने लोग आए हैं, राधा रमन का दर्शन कितने लोगों ने किया है? गोविंद देव की कथा ऐसी है कि भगवान का जब लीला समाप्त हो गया, भगवान ने 125 साल तक द्वापर युग में लीला किया, यहाँ पर मथुरा में जन्म हुआ, गोकुल में पले, फिर वृंदावन में गए, नंदगांव बरसाने में रहे, फिर वहाँ से मथुरा गए, वहाँ से द्वारका गए, वहाँ से हस्तिनापुर में युद्ध करवाया, बहुत राक्षसों का वध किया, द्वारका में राज किया, फिर दोबारा वृंदावन में आए, फिर दंतवक्र का वध किया, फिर उनके जो यादव थे उनका भी संहार हो गया, और फिर भगवान भी अपने धाम में चले गए। तो उनके धाम में जाने के बाद में उनके जो ग्रेट ग्रैंडसन हैं, प्रपोत्र कहते हैं उसको, ग्रेट ग्रैंडसन, उनका नाम है क्या, बज्रनाभ। और अर्जुन के जो ग्रेट ग्रैंडसन थे, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, उसका पुत्र का नाम क्या था, परीक्षित महाराज। तो परीक्षित को राजा बना दिया गया, क्योंकि पांडव भी चले गए भगवान जाने के बाद में। तो उन्होंने कहा कि अपने छोटे से बालक को राजा सिंहासन पर बिठाया और वो चले गए। और भगवान के द्वारका के जो अनुयायी थे, उनके ग्रेट ग्रैंडसन थे, मतलब भगवान के पहले पुत्र का नाम है प्रद्युम्न, जो रुक्मिणी और भगवान का पुत्र है प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न का पुत्र का नाम है अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के पुत्र का नाम है वज्रनाभ। तो वज्रनाभ को परीक्षित महाराज ने अपने राज्य में ब्रज का इंचार्ज बना दिया। पूरे वृंदावन धाम में भगवान ने लीला किया, उसका भगवान ने उनको रीडेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, क्योंकि वो सब लुप्त तो हो गया था ना। तो वज्रनाभ को बहुत रुचि थी इसके अंदर, ब्रज के अंदर। तो उन्होंने उनको पूरा काम सौंप दिया कि इस पूरे क्षेत्र को जहाँ भगवान ने लीला किया है उसको आपको रीस्टैब्लिश करना है। तो उसने क्या किया, उसने एक विग्रह बनाया ठाकुर जी का, राधा कृष्ण का। और तब सब लोग जा चुके थे, भगवान की पत्नियां भी अंतर्धान हो चुकी थी, भगवान की पत्नियां भी ब्रज में आई, जमुना जी के पास आई, वहां से कुसुम सरोवर में गोवर्धन के पास गई, और वहां पर उद्धव जी का उनका मुलाकात हुआ। उद्धव जी ने उनको श्रीमद् भागवतम सुनाया और सारी भगवान की पत्नियां जो हैं वो भी भगवान के धाम में चली गई। तो वो भी चली गई थी जिनको भगवान ने दर्शन किया था, एक ही स्त्री बची थी जिनका नाम था उत्तरा, जो अभिमन्यु की पत्नी थी, विधवा थी, उस समय बुजुर्ग भी हो गई थी उस समय। तो उन्होंने विग्रह बनाया, जिन्होंने कृष्ण को देखा था ऐसे एक ही व्यक्ति बची थी उत्तरा। तो उन्होंने वो विग्रह उनको दिखाया, तो उन्होंने कहा कि ये विग्रह जो है ना, इनके जो चरण जो बने हुए हैं आपकी स्कल्प्टर से, जो आपने मूर्तिकार ने बनाया है उसके चरण, वो ठाकुर जी के एकदम समान है। होता ना कभी आप चित्र निकालते बोलते कि ये सब कुछ ठीक है लेकिन इसका चेहरा एकदम बराबर, आंख और एकदम परफेक्ट आया है। तो उन्होंने कहा कि इस मूर्ति के जो चरण है ना एकदम परफेक्ट बने हुए हैं। तो वो विग्रह का नाम हुआ राधा मदन मोहन, और वो विग्रह जो है उसका नाम है संबंध अधिदेव, और वो विग्रह जो है वो हमारा भगवान से संपर्क कराते हैं, कॉन्टेक्ट कराते हैं। फिर दूसरा विग्रह बनाया, फिर उत्तरा देवी को दिखाया। उत्तरा देवी ने कहा इसका जो वक्षस्थल है यानी कंधे से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा है वो एकदम भगवान के जैसा है, जैसे भगवान थे। तो वो विग्रह का नाम पड़ा राधा गोविंद देव। और फिर उन्हें और एक विग्रह बनाया और फिर दिखाया उत्तरा देवी को। उन्होंने कहा उनका तो चेहरा जो है, मुख कमल जो है, वो एकदम परफेक्ट इस मूर्ति में सेट हो गया है परफेक्टली। और उन विग्रह का नाम पड़ा राधा गोपीनाथ। तो वह वो उसका इतिहास है, संबंध अधिदेव मदन मोहन जी कैसे बने, चरण उनके परफेक्ट भगवान जैसे हैं, तो उन चरणों से वो अपना संपर्क करा देते हैं। फिर गोविंद देव जी उन संपर्क किए भक्तों को अपनी सेवा में परिपूर्णता देते हैं, ये मेक्स देम परफेक्ट इन सर्विस। फिर गोपीनाथ जी अपनी मुरली से उनको आकर्षित कर लेते हैं, जो उनके मुख के पास रखकर उठों पर रखकर बजाते हैं। फिर वृंदावन में एक विग्रह है जो शालिग्राम, बहुत लंबी लंबी कथा है, आप वृंदावन में आएंगे तो बताएंगे आपको विस्तार में। एक विग्रह ऐसे हैं जो शालिग्राम शिला से उत्पन्न हुए हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने इच्छा किया था कि हमारे शालिग्राम को तो हाथ पैर मुख तो कुछ है ही नहीं, तो हम श्रृंगार कैसे करेंगे उनका, ऐसी इच्छा तो उनकी हुई थी। तो नरसिंह चतुर्दशी के ऊपर उन्होंने इच्छा की थी कि अरे खंबे से भगवान आए तो भगवान को क्या मुमकिन नहीं है, वो कहीं से भी आ सकते हैं, तो हमारे शालिग्राम शिला से भी आ सकते हैं। ऐसा करके उन्होंने मन में प्रार्थना किया, गंगा जी जमुना जी में स्नान किया और सो गए वो भगवान को शयन करा के। तो अगले दिन उनके 12 शालिग्राम शिला के बीच एक शिला थी दामोदर नाम की शिला, उस शिला से आगे से पूरा विग्रह तैयार हो गया कंप्लीट, उसी पत्थर का बना हुआ वैसे ही, जो केवल 12 उंगली से बना होता है, तो 4 उंगली ऐसे रखिए, 4 उंगली ऐसे, 12 उंगली से इतनी उनकी इसकी लेंथ है मूर्ति, इतनी छोटी सी मूर्ति है, इतनी सी मूर्ति है, लेकिन पूरे शालिग्राम के काले पत्थर से बनी हुई है। शालिग्राम का जो पत्थर है ना वो आम पत्थर से अलग होता है, वो भी काला है ये भी काला है, लेकिन इस कालेपन में बिल्कुल अंतर है, बहुत शाइनिंग और बहुत दिव्य होता है वो। तो वो विग्रह जब प्रकट हो गया तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने रूप गोस्वामी को बुलाया कि देखो देखो क्या चमत्कार हो गया है, मेरे मंदिर में शालिग्राम शिला से भगवान का विग्रह जो है, बहुत सुंदर विग्रह, जिसके हाथ ऐसे खड़े हैं, मुरली पकड़ी हुई है, एक पैर ऐसा मुड़ा हुआ है, कमर में झुके हुए हैं, गर्दन में झुके हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर उनके छोटे से विग्रह में बहुत फाइन उनके शरीर जो है बने हुए हैं, अंग उनके प्रकट हुए हैं। तो उन्होंने बड़े आनंद सबको बुलाया, देखने के लिए बुलाया। तो रूप गोस्वामी बड़े गौर से उनको देखा, बड़े गौर से उनको निहारा उन्होंने और कहा कि इनके चरण जो है वो मदन मोहन जी की तरह है, इसका वक्षस्थल जो है वो गोविंद देव की तरह है, इनका मुख कमल जो है वो गोपीनाथ की तरह है, और उन्होंने उनका नामकरण किया राधा रमण देव। तो राधा रमण देव जो है उनको दर्शन करने से एक ही साथ में मदन मोहन जी, गोविंद जी और गोपीनाथ जी का दर्शन करने का भाग्य प्राप्त होता है। ऐसा मैंने आपको क्यों बताया, इसमें से गोविंद जी यहाँ विराजमान है। ओरिजिनल गोविंद जी जो है, जो ओरिजिनल मूर्ति स्थापन की गई है वो वृंदावन में थी, वहां से औरंगजेब के आतंक के समय वो भी जयपुर में विराजमान है, उस जगह नए विग्रह रखे गए हैं, लेकिन ओरिजिनल मूर्ति जो है गोविंद जी की वो जयपुर में है। और मदन मोहन जी का जो ओरिजिनल विग्रह है वो भी वृंदावन में थे पहले, अभी वो करौली में है, वो जयपुर के आगे 8 घंटा एक जगह है करौली, उस जगह पर गोविंद जी है। और जो ओरिजिनल गोपीनाथ जी हैं वो भी जयपुर में है, क्योंकि जयपुर का जो राजा था, राजा थे जयपुर राजपूत, वो बहुत शक्तिशाली थे, और औरंगजेब ने हिम्मत नहीं की उनके यहाँ पर आक्रमण करने की, और वो सब राजपूत वैष्णव थे। तो जब औरंगजेब ने ब्रज में हमला करने का शुरुआत किया तो सभी मूर्तियों को लेकर सब लोग वैष्णव भाग गए अपनी मूर्तियों को लेकर, तो राजपूतों ने उनको आमंत्रण दिया, आइए हमारे पास आइए, हम आपकी रक्षा भी करेंगे और हम वैष्णव हैं, हमारे आपके विग्रहों की पूजा भी करेंगे। इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से ये सारे जो प्रमुख प्रमुख विग्रह हैं, मदन मोहन जी, गोविंद जी, गोपीनाथ जी, राधा विनोदी लाल और राधा श्याम सुंदर जी, राधा दामोदर जी, जितने बड़े 7 मंदिर के 7 विग्रह हैं वो सब अभी उधर हैं। केवल राधा रमन जी तो हैं, वो छोटे से थे इसलिए उनको बिस्तर के नीचे छुपाया गया, इसलिए अभी ओरिजिनल जो मूर्ति राधा रमन की है वो खाली वृंदावन में है, बाकी सारे ओरिजिनल विग्रह जो है वो सब जयपुर में और अलग अलग जगह पर विराजमान है। वृंदा देवी का भी विग्रह था गोविंद जी के पास, वो भी काम्यवन में विराजमान है, जो वृंदावन से बहुत दूर है, जहाँ हमने यात्रा किया था लास्ट टाइम पे। तो इस तरह से गोविंद जी का मुख्य आकर्षण क्या है, हमको सेवा में लगाने का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जब से यहाँ पर विग्रह आए हैं, हाँ एक गांव है छोटा सा ही, पूरा सिंपल लोग यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ पर अभी मंदिर होने से और कार्य शुरू होने से देखो कितने भक्त बताए आपने, यहाँ पर 6,000 लोग जो हैं भगवान के शरण में आए, और 6 करोड़ लोगों को लाना है। क्यों ऐसे हम लोग इस्कॉन मंदिर से ऐसे अलग अलग जगह पे क्यों मंदिर बनाते हैं, पुणे में भी है, बॉम्बे में भी 3 है, चौथा बनने वाला थाना में और सेंट्रल में भी बनेगा, और नेरुल में, खारगर में, उधर हार्बर लाइन में बन रहा है, क्यों बना रहे हैं? भगवान जो है वो हम जैसे लोगों को जो उनको भूल चुके हैं उनको याद करने के लिए आके रहते हैं हमारे पास। ये भगवान के धाम का खिड़की बताया गया है, द टेम्पल्स आर लाइक विंडोज टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जैसे हमारा भारत में देखो रशिया का भी एम्बेसी है, चाइना का भी एम्बेसी है, पाकिस्तान का भी है, इंग्लैंड का भी है, अमेरिका का भी है, दिल्ली जाएंगे तो बहुत बड़ा लंबा लंबा इलाका है सब देश के, रिपब्लिक का वहाँ पर एम्बेसी है, हाँ क्या कहते हैं उसको हिंदी में क्या कहते हैं, वकालत नहीं, दूतावास, राजकीय दूतावास कहते हैं उसको, हाँ पॉलिटिकल सेंटर, उस देश का प्रतिनिधि यहाँ पर वो बिल्डिंग में रहता है, उसको कहते हैं क्या एम्बेसडर, राजदूत कहते हैं उसको। वैसे गोलोक वृंदावन का पृथ्वी पर ये एम्बेसी है, दूतावास, यहाँ पर गोलोक धाम में क्या चल रहा है, वहाँ जाना कैसे है, जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या तैयारी करनी पड़ती है, सब गाइडेंस यहाँ मिलता है। आपको जो अमेरिका जाना है तो आप कहाँ जाएंगे, एम्बेसी जाएंगे ना, वहाँ इंक्वायरी करेंगे, फॉर्म लेके आएंगे वहाँ से, अमेरिका जाना कैसे है, वीज़ा कहाँ मिलता है, इंटरव्यू सब कुछ, फॉर्म भरने का काम, पैसा, फीस वीस सब कुछ, पासपोर्ट पर स्टैंपिंग सब उधर होता है, उस देश के एंट्री के लिए उस देश के दूतावास में वहाँ पर हमको जानकारी मिलती है। तो भगवान के धाम पे जाना है तो उसकी पूरी जानकारी और पूरी प्रोसीजर और पूरा जो सैंक्शन है वीज़ा आपको मंदिर में मिलता है। उस तरह से मंदिर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मंदिर पुराना है, कोई भाड़े का, कोई किराए का पगारी वाला पुजारी वहाँ रखा गया है, दिन में एक बार पूजा कर लेता है, बहुत धूल बैठी है विग्रह के ऊपर, वो अपना काम कर रहा है, जाता है घर पे, शाम को आके फिर खोलता है, वैसा मंदिर नहीं। मंदिर मतलब वहाँ पर हमेशा जागृति रहती है, परेशान, इट्स अ वाइब्रेंट टेम्पल। हाँ इतने पढ़े लिखे ब्रह्मचारी लोग वहाँ पर अपना घरदार छोड़ के फुल टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों? जो आम जनता जो भगवान के विषय में रुचि रखती नहीं है उनको रुचि उत्पन्न करने के लिए हाँ उनको आमंत्रण देते हैं, उत्सव करते हैं, रथ यात्रा करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं, गौ चालन करते हैं, बाल संस्कार केंद्र चलाते हैं, ये सब क्यों करते हैं? किसी ना किसी मार्ग से हम सब लोगों को भगवान के लिए आकर्षण उत्पन्न हो, हमारे मन में कुछ प्रेम उत्पन्न हो उनके लिए, वो स्वयं आके खड़े हैं भगवान यहाँ पर, ताकि अपना दिव्य रूप से हमारे मन को हृदय को मोह लें, आकर्षित कर लें, हमारा ध्यान उनकी ओर खींच लें। इसलिए वो स्वयं भी आते हैं यहाँ पर, खड़े होते हैं, दिन भर खड़े हैं दर्शन देने के लिए, सबका हृदय हरने के लिए। तो ये बड़ी कृपा की बात है, बड़ी दया की बात है। और मैं मैडम कुलकर्णी का बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने कहा था कि हमको जाना है निगड़ी और आप सबको इकट्ठा किया उन्होंने। हाँ, ऐसे हमारे इस्कॉन के वर्ल्ड में 600 मंदिर हैं वर्ल्ड के अंदर। ऐसा दुनिया में कोई देश नहीं है और कोई ऐसा प्रधान शहर नहीं है जिसमें हमारा इस्कॉन का मंदिर नहीं है। इससे अलग अलग साइज के अलग अलग पत्थरों के, कई काले कृष्ण हैं, कई नीले रंग के कृष्ण हैं, कई सफ़ेद मूर्ति में कृष्ण बने हुए हैं, ऐसे अलग अलग सुंदर सुंदर विग्रह बने हुए हैं। मेरे जीवन की एक तमन्ना है इस जीवन में, इस जीवन को समाप्त होने के पहले एक बार वर्ल्ड के सारे मंदिर का दर्शन मैं करूँ। हमको फॉरेन में जाने का और कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट एक ही है, फॉरेन जाएंगे तो वहाँ कहाँ इस्कॉन का सेंटर है, वहाँ पर हम जाके रहते हैं तो प्रसाद के लिए भी कुछ चिंता नहीं होती है। हाँ, नो कांदा लहसुन, कुछ गड़बड़ नहीं होता है, वहाँ पर कोई मांस वास खाने का टेंशन नहीं रहता है, शुद्ध प्रसाद खाने को मिलता है, जप करने के लिए भागवतम क्लास सुनने को मिलता है, दर्शन होता है भगवान का, बाकी हमारा फिर बिजनेस भी कर सकते हैं। इस तरह से हर जगह पर प्रभुपाद जी ने ये मंदिर खोला हुआ है और एवरी टेम्पल इज वाइब्रेंट। हाँ, कोई ऐसा एकदम सा सुनसुना ऐसा कोई वहाँ पर है ही नहीं, कोई सब गंदगी पड़ी हुई है। हाँ, जो कोलिष्ट का मतलब क्या बोलते हैं उसको, कॉब वेब, सब जब गंदा लटक रहा है, कोई साफ नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। हर मंदिर आपको देखेगा चकाचक सफाई सफाई करके एकदम, कहीं भी जाएंगे तो साफ सफाई एक क्लास की होती है। प्रसाद जो है वो वर्ल्ड में फेमस है इस्कॉन के, किसी भी देश में आप इटालियन, स्पैनिश और इंग्लैंड, अमेरिकन, उसका स्टाइल का प्रसाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा एकदम एक क्लास का। लोग पूछते भी हैं अब कहाँ जा रहे हैं, तो इस्कॉन मंदिर ढूंढते हैं कि वहाँ पर उनका लंच और डिनर में गोविंदा में ले सकते हैं। इस तरह से मंदिरों को बहुत क्या कहते हैं जागरूक रखा है प्रभुपाद जी की संस्था में, यहाँ प्रसादम, प्रचार, प्रवचन, ग्रंथों का वितरण, शास्त्र का वितरण, ज्ञान का वितरण, लोगों को हेल्प करना भक्त बनने के लिए, उत्सव मनाना। इस तरह से अमेरिका, इंग्लैंड, साइबेरिया, रशिया, ईरान, कुवैत, सब जगह मंदिर है, दुबई में मंदिर है, बाहरेन में मंदिर है, मुसलमान के देश में भी हमारे कृष्ण का मंदिर है और वहाँ पर लोग जाके भगवान की पूजा करते हैं, अपने जीवन के आध्यात्मिक जीवन को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो वैसे ही इस गांव में एक दिन हमारे मराठी बोलने वाले भक्त जो हैं राधा गोपीनाथ मंदिर के, यहाँ पर आए थे, इनसे यहाँ पर कुछ होना चाहिए, तो आज यहाँ पर इतना सुंदर मंदिर है, पूर्ण मराठी भाषा के यहाँ पर भक्त समाज है, बहुत सुंदर। मुझे इतना आनंद आता है यहाँ पर, जब भी आता हूँ तो मैं बड़े प्रेम से भक्त मुझे बुलाते हैं, उनके घर पर रहता हूँ, यहाँ पर आके दर्शन करता हूँ, कभी कभी कथा भी कर लेता हूँ, लेकिन मेरा मेन अट्रैक्शन क्या है, बाकी तो बहाने हैं लेकिन आते हैं उनको देखने के लिए। बाकी आने के बाद तो कथा ही करनी पड़ती है, लेक्चर भी देना पड़ता है, सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन मेन अट्रैक्शन जो है उनको देखना है, बस देखते रहो। आपको पता है वो हमारे बॉम्बे में फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन रहते हैं ना जुहू में, उनके बंगले के बाहर ना कुछ नाम है उसका, जलसा ऐसा कुछ नाम है, उसके बाहर बहुत लोग खड़े रहते हैं, ऐसे खाली खड़े रहते हैं उनको देखने के लिए, एक खिड़की में आएगा तो कम से कम देख लेंगे उसको। अरे ऐश्वर्या भी आ सकती है कभी बच्चे को लेके, वो देख सकते हैं, वो तो दुनियादारी के लोग हैं, अभी बुढ़े हो गए, 70 इयर्स के हो गए, इतना चेहरे पे ऐसा लटक रहा है पूरा, बाल सफ़ेद हो गए एकदम, 70 इयर्स हो गए, सौंदर्य जो था पहले का अभी कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी फेम है, यश है, कीर्ति है, फिर भी इतने बुढ़े होने के बाद भी केवल उनको देखने के लिए बहुत सारे लड़कियाँ, लड़के, आदमी वहाँ पर खड़े रहते हैं ऐसे फुटपाथ पे, कि बाय चांस अगर वो कहीं गैलरी में आ गए तो उनका दर्शन कर लेते हैं, फिर वो आके ऐसे हाथ दिखाते हैं, सब लोग हाथ दिखा चिल्लाते हैं, आ गया आ गया आ गया, और उनकी मृत्यु होने वाला एक दिन मृत्यु हो गई समय के अनुसार। हम जिनको देखने के लिए आए हैं, दिखने के लिए आए हैं, वो ठाकुर जी हैं, स्वयं विश्व के नियंता हैं, गौलोक धाम के स्वामी हैं, वो सब सुंदरता के आगार हैं, वो सोर्स ऑफ ऑल ब्यूटी इन द वर्ल्ड, वो पर्सनैलिटी है जिनको देखने से नेत्र संतुष्ट होते हैं और हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। है ना, उनको देखने से समाधान होता है लेकिन फिर भी समाधान नहीं होता है, देखते रहो देखते रहो देखते रहो। गोपियां कहती है कि भगवान ने ब्रह्मा जी को हमारे शरीर बनाने के लिए काम दिया है, कॉन्ट्रैक्ट ना, यू मेक द बॉडी, सबका शरीर बनाओ, और उन्होंने आंखें बनाई हैं, और गोपियां कहती हैं ये आंखें बनी हैं केवल ठाकुर जी को देखने के लिए, और आंखों का कोई काम ही नहीं है, बाकी दुनिया में एक चीज दिखती है ठीक है, बाय द वे यू आर सीइंग एवरीथिंग, लेकिन बनाया इसलिए है ताकि उनके श्री रूप को हम देखते रहें, निहारते रहें और उनका आनंद लेते रहें, हर उनके श्री अंग को निहारते रहें और हृदय में बसा लें। और फिर ब्रह्मा जी को गाली देते हैं, ब्रह्मा जी को, है ना, ब्रह्मा जी आपको पता है कौन है? ब्रह्मा जी ये वर्ल्ड के, जो ये लोक के, ये ब्रह्मांड के सबसे बुद्धिमान जीव जो है, पहले जीव ब्रह्मा जी है, द हाइएस्ट इंटेलिजेंस व्हाट यू कैन इमेजिन, वो ब्रह्मा जी हैं। उनका एक सर नहीं है, उनके चार सर हैं और चार ब्रेन हैं उनके अंदर, और वो हमारे जैसा ब्रेन नहीं है कलयुग का, वो सुपर फाइन ब्रेन है जो सारे शरीर बनाते हैं। आपने यहाँ सब लेडीज हैं, लेकिन एक भी लेडी किसी और के साथ में मिलती जुलती नहीं है, सब डिफरेंट है, है ना, सबके हाथ पाँव, सबका शरीर का साइज, नाक, हाँ सब कुछ अलग है, एवरीथिंग इज डिफरेंट। जुड़वा भाई भी सेम दिखते नहीं है, वो भी अलग होते हैं। इतना ब्रह्मा जी का मतलब होशियारी, बुद्धि का काम है वो। इतना बुद्धि होने पर भी जो भगवान के परम भक्त हैं गोपियाँ, वो उनको गाली देती हैं, बोलते हैं ब्रह्मा जी को अकल ही नहीं है। क्यों क्यों अकल नहीं उनको? उन्होंने आंखें बनाई, अच्छा काम किया, लेकिन पलके क्यों बनाई? पलके बनाया, गलती किया उन्होंने बहुत, क्योंकि पलके जो है ना बार बार बंद होती रहती है, और वो हमको भगवान के दर्शन में डिस्टर्ब होता है, बार बार बंद होती है, खुलता है ना, हमको पता नहीं चलता, लेकिन उनको डिस्टर्ब होता है। जो भगवान के दर्शन में खो गई हैं, उनके लिए एक लव मात्र का जो आई ब्लिंकिंग है ना, वो भी डिस्टर्बेंस है। उसे पलके बनाना नहीं चाहता, ऐसे ही ओपन रहना चाहिए हमेशा, कॉन्स्टेंट वॉचिंग एंड ड्रिंकिंग एंड ड्रिंकिंग एंड ड्रिंकिंग, उसको कहते हैं रूप रस का पान करते हैं। भगवान का जो रूप है, उसका जो रस है, वो नेत्रों के माध्यम से वो हमेशा पान करते रहते हैं, और पान करके संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी असंतुष्ट रहते हैं। तो भगवान की जो रूप की जो माधुरी है, इसका एक वर्णन ऐसे आता है कि 7 दिन और 7 रात भगवान गोवर्धन उठाए खड़े रहे ना वहाँ पर, उसमें कुछ था क्या? लंच ब्रेक था, कोई टी ब्रेक, कोई बिस्किट ब्रेक, कोई हाई टी लो टी, ऐसा कुछ था क्या उसके अंदर? कॉन्फ्रेंस के अंदर कितना होता है हाई टी लो टी, ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, लंच, फिर उसमें विश्राम, रात को विश्राम होता है। 7 दिन 7 रात वो उठाए खड़े रहे गोवर्धन को, एक हाथ से मुरली बजा रहे हैं, एक हाथ से पर्वत को उठाए, और किसी ने भी वहाँ पर बोला नहीं कि भूख लग रही है, खाना खिलाओ, और बाथरूम जाना है, और थोड़ा सा रिलैक्स होना है, कंफर्ट करना है। इसका रहस्य क्या है, क्या कारण था उसका, कैसे कर सके वो? रोज़ तो अपने घर में खाते थे खाना ना, रोज खाना खाते थे, सोते भी थे, और गाय चराते थे, सब काम करते थे, बीच में ब्रेक भी लेते थे, लेकिन उन 7 दिनों में उनको कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई किसी ने मांगा भी नहीं कि नींद आ रही है, थक गए, अभी कितने दिन वर्षा होगी, अभी पता नहीं कब तक खड़ा रहना होगा यहाँ पर। भगवान बोल रहे कन्हैया जी क्या हो रहा है, कुछ न्यूज़ है कि आपके पास लेटेस्ट कि कब बंद होगी बारिश? कोई इंक्वायरी नहीं कर रहा है वहाँ पर, वो सोच रहे हैं एक्चुअली मन में कि बारिश होते रहने दो। क्यों होते रहने दो? क्योंकि उनका जो दर्शन था पहले से ही तो सौंदर्य के खान है, वो ऊपर से वो 3 अपने शरीर पर मोड़ देकर खड़े हैं, ऊपर से एक हाथ में गोवर्धन को उठाए, ऊपर से एक दूसरे हाथ से बांसुरी बजा रहे हैं, बहुत बहुत मीठी मीठी धुन बजा रहे हैं, सबको मोहित कर रहे हैं। तो जो उनका दर्शन था, एक हाथ से मुरली बजा रहे हैं, एक हाथ से गोवर्धन को उठा रहे हैं, और अलग अलग धुन बजा रहे हैं, कभी गोपियों से संबंध कर रहे हैं, कभी ग्वाल वालों से बात कर रहे हैं, कभी माता पिता से बात कर रहे हैं, कभी गायों से बात कर रहे हैं, एक साथ में वो सभी भक्तों से मिले हुए हैं और लीला कर रहे हैं गोवर्धन पर्वत के नीचे, जो वो खुद ही उठा के खड़े हैं। तो उनका दर्शन जो था उनका, वो इतना मनमोहक था कि वो उनको देखते ही रह गए, बस खाली केवल देखते रह गए, इंद्रियों के परे चले गए, वो शरीर के बंधन से परे चले गए, शरीर के बंधन से मुक्त हो गए वो उस समय, और केवल नेत्रों में अपनी जान को लाकर केवल भगवान को ग्रहण करते रहे, वो कॉन्स्टेंटली एब्सॉर्बिंग द नेक्टर द ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड। इसलिए वो थोड़े दुखी हो गए जब भगवान ने पर्वत नीचे रखा ना, तो लगा लीला एंड हो गया अभी। तो 7 दिन आनंद लिया दिन रात, वो अभी इसके आगे नहीं मिलेगा। तो ये है रूप माधुरी भगवान की। ये भगवान इतने सुंदर हैं कि द्वारका में जब वो अपने महल में चलते थे, तो उनके स्फटिक के स्तंभ बने थे वहाँ पर। स्फटिक मतलब यू नो ट्रांसपेरेंट ज्वेल्स, जो आईने की तरह हुआ करते थे, वॉक एंड यू कैन सी योर सेल्फ वॉकिंग। तो वो स्फटिक के बने हुए स्तंभ में अपनी ही प्रतिमा को देखकर भगवान कभी कभी बेहोश हो जाते थे। चल रहे हैं दरबार में जाने के लिए, बाय द वे देखते हैं अपने आप को, अपनी छवि को, तो इतना सुंदर व्यक्ति कौन है, ये देख के खुद ही बेहोश हो जाते थे। वृंदावन धाम में जब बालक थे, तभी वो जमुना किनारे में गेंद खेलते थे, और जमुना किनारे में गेंद खेलते समय कभी कभी मालूम है ना, गेंद मारेंगे तो वो जल में जाके गिरती थी, तो कभी कभी कृष्ण भगवान का टर्न आता था कि तुम जाके गेंद लेके आओ, कभी बोलते सुदामा तुम लेके आओ, कभी बोलते रक्तक तुम लेके आओ, कभी बोलते हैं उज्ज्वल तुम ले आओ, कभी बोलते हैं अभी सबने टर्न हो गया, अभी तुम्हारा टर्न है, तुम जाओ। भगवान वहाँ भगवान के रूप में रहते नहीं ना, वो अपने खेलने के मूड में रहते हैं। तो जब भगवान का समय आता था गेंद लाने का, जो पानी में गिरी हुई है, तो वो जब पानी में उतरने के लिए झुकते थे तो पानी के अंदर उनकी छवि उनको दिखाई पड़ती थी, तो अपनी ही छवि देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर वो बेहोश होकर पानी में गिर जाते थे। समझे ना, ऐसे झुक रहे हैं, झुकते हुए अपने आप को देख रहे हैं, अपने को देख के मोहित होके उसी पानी में ऐसे गिर जाते थे। ये उनका खुद का सौंदर्य है, जो उनको भी पता नहीं कि इसमें सौंदर्य में रहस्य क्या है, इसलिए खुद भी देखकर मोहित होते हैं। तो ये भगवान को देखने के लिए ये आँख बनी हुई है। हाँ, दुनिया का कोई माउंटेन और ये हम देखते हैं, भगवान का ही निर्माण किया हुआ है, लेकिन पर्पज उसका ये है भगवान को देखने के लिए। और बाद में अगर आप बाहर गए देखते हो तो कैसे देखते हो कि देखो कितना सुंदर नज़ारा है, यही भी उन्होंने ही बनाया है, ये उनका ही बनाया हुआ है, उनकी याद करते हैं। अगर कोई सुंदर वस्तु को देखते हैं तो याद करते हैं कि इसमें जो सुंदरता है ये उन्हीं की तरफ से आई हुई है, भले टेम्पररी है, पहाड़ है, नदी है, झाड़ है, पेड़ है, हरियाली है, बहुत मन को मोह लेती है, लेकिन जब भक्त उसको देखता है तो सोचता है वाह क्या बढ़िया पहाड़, ऐसा नहीं बोलता है, बोलता कि ये भगवान का निर्माण किया हुआ सुंदर दृश्य है। आकाश में देखते हैं सूरज का उगय हो रहा है, फिर अलग अलग कलर्स वहां पर आ रहे हैं, कोई गुलाबी है, कोई गोल्डन है, कोई ब्लू है, सब दिखाई पड़ता है। बादलों पर एक लाइन आता है गोल्डन, मैं इनको दिखाते दिखाते लाया अभी, हाँ गोपीकांत जी दिखाया ना आपको पर्वत पे उधर पर बादल पे, वो सब दृश्य जो है बदलते रहता है, शाम के समय बदलता है, दिन में बदलता है, हर मिनट में बदलते रहता है। वो इतना सौंदर्य निर्माण जो किया है, वो सौंदर्य का उगम जो है भगवान कृष्ण उसके द्वारा बनाया गया है, इस भावना में उसको दर्शन करते रहते हैं। सो मन में किसी को देखेंगे, जैसे कोई अगर लड़का किसी लड़के के प्रेम में गिरा है, वो कहीं भी जाएगा तो उसको वही नजर आएगी, उसको भी वही दिखाई पड़ेगा, मन में ही बसा हुआ है ना वो, जब मन में छवि बस गई है दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो वो शून्य में देखते रहेंगे ऐसे, बोलो क्या देख रहे हो, हाँ क्या हो गया, नहीं देख के सुने गए, उसके मन में वो छवि जो है उस पर ध्यान कर रहा है। वैसे भक्त लोग जो हैं जब भगवान को अपना दिल दे देते हैं तो देखते सब जगह पर है लेकिन देख रहे हैं उनको ही, क्योंकि जिसका हम दिल दे देते हैं उसी पर निछावर कर लेते हैं, उसी के ध्यान में मग्न रहते हैं। शून्यात बगणे ना, शून्यात बगणे तंद्री लागणे, हाँ तंद्री म्हणजे काय है, तंद्री म्हणजे मेडिटेटिंग ऑन गॉड इज रियल तंद्री, हमारी तंद्री और किसी चीज़ पे होती है, लेकिन जो भक्त होता है उसकी तंद्री जो है वो भगवान के ही छवि पर, उनकी सेवा में, उनके ही प्रेम में मग्न रहते हैं। हमको सबको ऐसे बनना है, तब जाकर ये सब कुछ जो प्रभुपाद जी ने मेहनत किया है, मंदिर बनाया है, प्रचार कर रहे हैं, इतना सारा उत्सव मना रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, सब इतना डेकोरेशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि इसको देखने के लिए लोग आएंगे, तो जो सेंटर जो में खड़े हैं ना व्यक्ति, वो राधा गोविंद जी, उनको भी देखेंगे, अरे उनको देखेंगे तो चिपक जाएंगे लोह चुंबक की तरह। बाय द वे बहुत सुंदर मंदिर बनाया है, वो डीवाई पाटिल से स्टूडेंट आ रहे हैं, हाँ, और बाय द वे सब स्टडी कर रहे हैं, और देखते देखते उनका नजर जाएगा राधा गोविंद के ऊपर, अरे बाप रे, ये सबसे विशेष चीज तो यही है, बाकी तो उनका डेकोरेशन है। तो प्रभुपाद जी ने कहा था, लोग प्रभुपाद को पूछते थे, प्रभुपाद जी को, इतने करोड़ों रुपए के मंदिर क्यों बनाते हैं आप इतना खर्च करके, वो बोलते हैं कि राधा रास बिहारी जो जूहू के भगवान है, उनका नाम राधा रास बिहारी जी है, उन्होंने ऐसे वो जूहू बीच पे चल रहे थे ऐसे वॉक पे, तो किसी ने प्रश्न किया उनको कि क्यों आप इतना खर्च कर रहे हो, इतना दुनिया में गरीबी है, इतना बेकारी है, आप इतना खर्च करके मंदिर बना रहे हो। तो उन्होंने चल रहा था, डंडे लेके चल रहे थे, डंडा ऐसा वालों में घुसा दिया था, मैं यहां अगर राधा रास बिहारी को रखूंगा झोपड़ी में तो कौन देखने को आएगा उनको, लेकिन जब मैंने संगमरमर का मार्बल का टेंपल बना दिया इतना बड़ा, वो देखने के लिए उनको लोग आते हैं, देखने के लोग आते हैं उनका जीवन परिवर्तित हो जाता है, उनके दुख कष्ट मिट जाते हैं, उनका जीवन में दुख कष्ट मिट के आनंद की शुरुआत होती है। तो मैं झोपड़ी में बैठकर भी राधा रास बिहारी को लेकर कथा प्रवचन करने को तैयार हूँ, लेकिन आएगा कोई नहीं सुनने के लिए, कि जब मैं इतना सुंदर भव्य मंदिर बनाऊंगा तो भव्य मंदिर का आर्किटेक्चर और डिजाइन और स्ट्रक्चर और क्या मटेरियल कहाँ से आया, ये कैसे आया, देखने के लोग आएंगे ना अट्रैक्शन, अरे आपको जाना चाहिए जुहू मंदिर में, बहुत सुंदर मंदिर बना है, अरे यू मस्ट गो टू न्यूयॉर्क, हाँ उधर क्या मंदिर बनाया है, अरे बैंगलोर में पक्का जाना चाहिए, बैंगलोर में वो पहाड़ पर क्या मंदिर बनाया है, तो आप जाएंगे देखने के लिए उसको, लेकिन फाइनली देखना किसको है, जो अंदर बैठे हैं ना ठाकुर जी महाराज, उनको देखने के लिए मंदिर बनाया इतना भव्य, इनका घर है। अरे कितने बड़े व्यक्ति होंगे, इसके लिए कितना बड़ा घर बनाया है दिव्य घर बनाया है। तो ये सुंदरता जो है ये भगवान के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिससे मोहित होने के लिए हम लोग यहां पर आए जानबूझकर। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।